हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 164। क्या हुआ मैम, आपने इस तरह अर्जेंट मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आज पहली बार ही, और वो भी सीक्रेटली। आपने मना क्यों किया कि मैं आदित्य सर से ये बात ना बताऊं? मैं आदित्य सर से कुछ भी नहीं छिपाता, एक्चुअली मैं उनके लिए ही सारे काम। सुनैना के सामने खड़ा रवि उससे पूछ रहा था और साथ ही उसे बता भी रहा था। तभी सुनैना उसकी बात काटते हुए बोली, हाँ तो मैं तुम्हारे आदित्य सर की वाइफ हूँ और हम दोनों कोई अलग नहीं हैं, तो जैसे तुम उनके लिए काम करते हो वैसे ही मेरे लिए भी तो कर सकते हो ना। और रही बात आदित्य से ये सब अभी ना बताने की, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है और तुम्हारे सर की ही भलाई है, तो बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करो रवि। ओके सुनैना मैम, अगर आप कह रही हैं तो ज़रूर सर की अच्छाई के लिए ही होगा, मुझे आप पर भरोसा है और मैं बस आधी सर का भला चाहता हूँ। सुनैना की बात सुनकर रवि उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है तो फिर ये देखो। बोलते हुए सुनैना लैपटॉप की स्क्रीन रवि के सामने करके उसे कुछ ओपन टैब्स दिखाती है। ये तो आदित्य सर की ही कंपनी का इन्फो है, ये क्यों सर्च कर रही थी आप? सर से पूछ लेती। एक मिनट, वो आपको इस बारे में नहीं बताते हैं क्या? स्क्रीन पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सर्च रिजल्ट देखकर रवि सुनैना की तरफ देखकर सवाल करता है, और सुनैना कुछ बोल पाती इससे पहले ही उन दोनों को दरवाजे पर किसी की आहट लगती है और दोनों ही एकदम चुप हो जाते हैं। ये आप दोनों की कॉफी और नाश्ता, बोलते हुए हाथ में ट्रे धरे दरवाजे पर गीता खड़ी हुई थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी गीता, तुम तो जानती हो मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, रवि गीता को ये सब फॉर्मेलिटी करने से मना करते हुए बोला। तो सुनैना उसकी बात काटते हुए गीता की तरफ देखकर कहती है, यहाँ टेबल पर रख दो। और कोई बात नहीं रवि, मैंने बोला था गीता दी को। रवि और गीता दोनों की बात का एक साथ ही जवाब देते हुए सुनैना बोली, और उसकी बात मानकर गीता वहाँ टेबल पर ट्रे रखकर वहाँ से चली जाती है। हाँ तो कहाँ थे हम? गीता के जाने के बाद कुछ सेकंड का पॉज लेकर सुनैना फिर से बोलना शुरू करती है, मैम वो सिन्हानिया इंडस्ट्रीज, आई थिंक आदित्य सर ने आपको बता दिया होगा सब कुछ, बट उन्होंने अब तक नहीं बताया, तो ज़रूर उन्होंने इसके पीछे। सुनैना को आदित्य की कंपनी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, ये सोचकर रवि को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो अब सुनैना के साथ बातचीत करने में थोड़ा सा झिझकने लगता है। और सुनैना भी ये बात महसूस कर लेती है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं पता या आदित्य मुझे कुछ बताता नहीं, उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन बस मुझे सब कुछ जानना है, और वो जिसके बारे में वो भी बात करने से बचता है, और शायद तुम्हें पता नहीं उसके अब्यूसिव पास्ट के बारे में, जितना मेंटल ट्रॉमा उसने झेला है उसके बाद तो कोई भी ऐसा ही हो जाएगा। सुनैना रवि को अपने विश्वास में लेने की पूरी कोशिश करते हुए एकदम कॉन्फिडेंट होकर ये सारी बात बोलती है, और फिर आदित्य के बारे में सोचते हुए सच में थोड़ी सी मायूस हो जाती है। मुझे पता है मैम, और शायद सब कुछ नहीं लेकिन काफ़ी कुछ। वैसे मैं आदि सर के साथ प्रोफेशनली जुड़ा हुआ हूँ, और वो ऐसे इंसान हैं कि जल्दी सबको सब कुछ जानने का मौका नहीं देते अपने बारे में, लेकिन मैं उनकी पर्सनल लाइफ और उनके डैड की डेथ के बाद से हुए डिप्रेशन और मेंटल ट्रॉमा के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता हूँ। सुनैना को इस तरह आदित्य के लिए दुखी होते देख रवि को कहीं ना कहीं भरोसा हो जाता है कि सुनैना आदित्य की बहुत फिक्र करती है, इसलिए वो भी उसे अपनी तरफ से बताते हुए कहता है, हाँ तो ठीक है फिर, तुम मुझे ये बताओ कि इस सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक पर तुम्हारे सर आदित्य सर का नेम और फेस क्यों नहीं है अब तक? और मैंने जहाँ भी सर्च किया उनके डैड का नाम ही अब तक पढ़ा हुआ है, और कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि लेट मिस्टर विजय सिंघानिया, जबकि जहाँ तक मुझे पता है और अभी तुमने भी बोला कि आदित्य के डैड अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर क्यों है ऐसा? सुनैना अब सीधा ही रवि से वो सवाल करती है जिसका जवाब वो इतनी देर से जानना चाह रही थी, रवि के आने से पहले से ही। उसकी बात सुनकर रवि अभी भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसे जितना समझ में आता है उस हिसाब से वो सुनैना को बताते हुए बोलता है, देखिए मैम, जहाँ तक मुझे पता है और मैं जितना आदित्य सर को जानता हूँ उस हिसाब से तो यही रीज़न हो सकता है कि वो ज़्यादा मीटिंग और नए लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, और साथ ही ज़्यादा सोशलाइज करना भी, तो इसीलिए अब तक उन्होंने किसी प्रॉपर्टी और सारी कंपनी पर अपना नाम नहीं डलवाया। वो नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग उन्हें जानें और वो फेमस हों और लोगों की नज़रों में आएं, वो बस अकेले रहना और पर्दे के पीछे रहकर ही अपना काम करना पसंद करते हैं। ओ गॉड, ये आदमी भी पागल है ये। बिल्कुल ऐसा तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। लेकिन ऐसा करने से तो काफी प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि कंपनी पर कोई और भी क्लेम कर सकता है ना? और इतनी प्रॉब्लम क्या है ऐसे लोगों से? रवि की बात सुनकर सुनैना दोनों हाथ से अपना सर पकड़कर थोड़ी सी तेज आवाज में परेशान होते हुए ये बात बोलती है। हाँ शायद, और उनके रिलेटिव्स, वो चाचा जी आप शायद जानती होंगी, वो ज्यादातर इसी में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके कंपनी का 51% शेयर उनके नाम हो जाए। और आदित्य सर को भी ये बात अच्छी तरह पता है, लेकिन वो सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हैं और अभी तक उन्होंने अपने किसी भी रिलेटिव को ऐसा कोई मौका नहीं दिया। सुनैना की बात सुनकर रवि उसके डाउट थोड़े क्लियर करते हुए बोलता है, लेकिन सुनैना के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब बाकी थे। और तभी जैसे अचानक से सुनैना को कुछ याद आता है और वो रवि की तरफ देखते हुए पूछती है, एक मिनट, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जिसमें लिखा था कि शादी के बाद खुद ही सारी प्रॉपर्टी आदित्य के नाम हो जाएगी, और इसीलिए उसने मुझसे इस तरह से शादी की, और वो उसके 25th बर्थडे वाली बात, वो सब कुछ झूठ था?
वो सब आप आदित्य सर से ही पूछिएगा, मैं नहीं बता सकता, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर मैंने ज्यादा कुछ आपको बता दिया तो फिर मेरी नौकरी भी जा सकती है, आदित्य सर का कोई भरोसा नहीं।
रवि, जो अब तक आदित्य की कंपनी और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन सुनैना को बिना किसी हिचकिचाहट के बता रहा था, ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बीच में आने पर वो थोड़ा सा घबराया हुआ और सुनैना से नजरें चुराता हुआ बोला,
रवि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे ये बताओ।
अच्छा ठीक है, इतना ही बता दो, आदित्य का बर्थडे कब होता है, कुछ पता है तुम्हें इस बारे में?
मैं आपको कंपनी का पर्सनल डेटा चेक करके देखकर बता दूंगा, और आप मुझे अपना मेल आईडी दे दीजिए तो मैं मेल कर दूंगा।
सुनैना अब कॉन्ट्रैक्ट की बात जोर देकर नहीं पूछती तो रवि भी उससे थोड़ा सहज होकर बात करता है, और उसकी बात सुनकर सुनैना अपने मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देती है और फिर अपना ईमेल आईडी भी सेंड कर देती है। और फिर रवि को ऑफिस से शिवानी का कॉल आता है, वो उससे पूछती है कि रवि इतने टाइम से कहाँ गायब है, तो सुनैना किसी को भी इस बारे में बताने से पहले ही मना कर चुकी थी, तो रवि शिवानी से कहता है कि वो किसी इम्पोर्टेंट काम से ही आया हुआ है, ऑफिस के ही काम से, और अभी कुछ देर में वापस आ रहा है ऑफिस, और इतना बोलकर वो शिवानी से बात करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है।
लेकिन शिवानी का कॉल आने से उसे वहां सुनैना के पास से निकलकर जाने का मौका भी मिल जाता है, और रवि सुनैना की तरफ देखकर कहता है, मैम ऑफिस से कॉल था, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, नहीं तो फिर सर को पता भी चल सकता है। ठीक है, तुम जाओ और मुझे जिस भी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं तुम्हें मेल करूंगी और तुम मुझे सेंड कर देना। सुनैना रवि को वहां से जाने देती है, और फिर रवि ने जो कुछ भी उसे बताया था उन सबको जोड़कर देखते हुए आदित्य के बारे में फिर से सोचने लगती है, और फिर वो लैपटॉप वापस उसी जगह पर आदित्य के आने से पहले ही स्टडी रूम ठीक तरह से बंद करके वहां से चली जाती है, और बाहर जाकर एकदम नॉर्मल नीचे स्वीटी के रूम में जाती है, और वो शॉपिंग से जो जो सामान लाई थी एकदम खुश और एक्साइटेड होकर उसके साथ वो सब कुछ देखने लगती है। प्रथम, अक्षत और नैना फिल्म स्टूडियो के बाहर। नैना और अक्षत साथ में अक्षत के शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं, और वहां पर पहले से ही काफी सारे सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स का इंतजाम था, जो कि अक्षत तक किसी भी न्यूज रिपोर्टर और फोटोग्राफर को पहुंचने नहीं दे रहे थे, और उसके साथ नैना को देखकर तो सभी अपना पूरा जोर लगा रहे थे ताकि अक्षत और नैना की फोटो क्लिक कर पाए अपने मैगजीन या कवर इमेज के लिए और उन्हें न्यूज मिल पाए। नैना अक्षत के साथ कार से उतरती है, वो इतनी ज्यादा भील जिसमें कि न्यूज रिपोर्टर, फैंस, स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, फिल्म सेट के वर्कर, ये सब थे, उन्हें देखकर नैना थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि जहां तक अभी उसने जितना भी काम किया था और जितनी भी शूटिंग लोकेशन उसने देखी थी वो सब उसके फोटोशूट और एड शूट ही थे, तो उसने इतनी ज्यादा भीड़ और इतने काम करने वाले लोग नहीं देखे थे, तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है और नर्वस हो जाती है, तो अक्षत उसका हाथ थाम लेता है और उसे कंफर्टेबल करते हुए अपने साथ आगे चलने को कहता है। नैना ने अपने चेहरे को कवर करने के लिए मास्क और बड़े से सनग्लासेस लगाए हुए थे, जो कि अक्षत का ही आइडिया था और कार में नैना के पूछने पर अक्षत ने उसे दिया था। इससे नैना की रियल फेस आईडी छिपाने में काफी हेल्प हो रही थी, और अक्षत भी डार्क ब्राउन कलर के शेड्स लगाए हुए नैना के हाथ में हाथ डाले अपनी कार से उतरकर अपनी वैनिटी वैन की तरफ ही बढ़ रहा था।
अक्षत सर, एक सवाल, बस एक फोटो, इधर इधर प्लीज अक्षत सर।
चिल्लाने की ये सारी आवाजें अक्षत को अपने पीछे की तरफ से आ रही थीं, तो वो कुछ पल के लिए रुककर एक बार पीछे मुड़ता है और उस तरफ देखता है, लेकिन नैना पीछे मुड़कर नहीं देखती, और फिर अक्षत भी कुछ सेकंड वहां रुककर वापस अपनी वैनिटी की तरफ आता है और अंदर आकर वैनिटी वैन का दरवाज़ा बंद कर लेता है।
ओ माई गॉड, योर फैंस आर रियली क्रेजी फॉर यू। मुझे तो लगा ही नहीं था इतनी भीड़ से निकलकर हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, बट काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है।
नैना वैनिटी वैन के अंदर रखे उस बड़े से आरामदायक काउच पर बैठकर अपने सनग्लासेस और मास्क निकालते हुए बोलती है,
ये देखो कौन बोल रहा है जो खुद उस दिन पार्टी में रितेश की क्रेजी फैन की तरह एक्ट कर रही थी।
नैना की बात सुनकर अक्षत स्माइल करते हुए उसे उस दिन की बात याद दिलाते हुए बोलता है, तो नैना भी वो सब याद करके थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और कुछ नहीं बोलती।
क्रमशः